ओम शांति। बहुत अच्छा विषय है अभी की क्लास का, मन जीते जगत जीत। तो आप सभी तो जगत जीत बैठे हुए, आप सबको ये तो सदा नशा रहता है कि इस आने वाला जो सतयुगी दुनिया है उसमें हमारे स्वभाव और कौन है मालिक और कौन है। मुझे एक बात याद आई साकार बाबा के दिनों की। बाबा मुरली चला के इस्ती हाल के बाहर आकर के कभी खड़े हो जाते थे और बाबा के बच्चे थोड़े उन दिनों में तो बहुत गिनती बहुत कम हुआ करती थी। पार्टीज में 35 40 50 का ग्रुप भी बड़ा माना जाता था। तो हम भी बाबा के आसपास इकट्ठे हो जाते थे। तो एक दिन बाबा कहने लगे, इस बाबा को बहुत नशा है कि ये शिव बाबा का अकेला बच्चा है, आप तो सब शिव बाबा के ब्रह्मा मुखवंशावली हो ना। बाबा कहता है मैं तो डायरेक्ट हूं ना, कितना नशा है मुझे। हम सब भी कहने लगे बाबा को हमने क्या कहा, हमने कहा हमें भी नशा है कि हमारे जैसे भी बाबा के पास और कोई नहीं, बाबा दुनिया का चक्कर लगा के आए, हमारे जैसा कोई नहीं मिलेगा जो एक्यूरेट उसकी श्रीमत पर चले, जो बाबा कहे। इसलिए उन दिनों की बातें कभी हम याद करते हैं 1958-59 की। उन दिनों की बातें किसी को सुनाते हैं तो उनको ऐसे लगता है जैसे ये रोचक कहानियां हैं। उन दिनों में कैसे बाबा के पास हम आए, एक एक की कहानी है। क्या स्टेज उन दिनों में होती थी, जैसे कहते टच किए हुए। आजकल हम कहते हैं वायरस क्वालिटी, माई क्वालिटी, मुरली में आता है ना वायरस क्वालिटी माई क्वालिटी। उन दिनों में ये शब्द नहीं प्रयोग होता था, जो आता था तो वायरस भी होता था और माइक भी होता था। जो भी बाबा के पास आता था, पढ़ा हो अनपढ़ा हो, छोटा हो बड़ा हो, आने से सेवा भी करता था। माई क्वालिटी का क्या माना, माइक माना जो बोले हरे, बाबा की बात सुनानी और सेवा क्या है, बाबा की बात सुनानी है। सतयुग आ रहा है, उन दिनों में क्या सुनाते थे, सतयुग आ रहा है बस तैयार हो जाओ, भगवान आ गया सतयुग आ रहा है, और क्या सुनाते थे। तो हर कोई सुनाता था, तो इसलिए वायरस क्वालिटी और माई क्वालिटी। कोई भी बात हमें याद है, हमारी मनोहर दादी टीचर थी, उसने बाबा का ज्ञान पहली बार सुनाया हमें, निमित्त बनी। दो दिन के बाद मुझे कहती है देखो अभी दो दिन के लेसन, तुम्हारे तो 7 दिन के लेसन होते हैं फिर योग कराते हैं। उसने तो पहले दिन का लेसन सुना के फिर योग भी कराया था, और 2 दिन के बाद कहती है देखो योग तब अच्छा लगता है अगर अन्न शुद्ध होता है। तो दफ्तर में काम करता था मैं, तो बाजार की और चाय वगैरह ना ये नहीं पीते हैं। तो मैंने उनको पता क्या कहा, मुझे याद है, मैंने कहा आपने ये बात दो दिन पहले क्यों नहीं बताई, मैं दो दिन तो चाय पी है। ये स्टेज हुआ करती थी ये, कि जो उन्होंने कहा वो तुरंत किया। जैसे एक पोएम है ना, देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। बस इसलिए लोग कहते थे कि ब्रह्मा कुमारी के पास नहीं जाओ, जादू लग जाता है। जादू, जादू मैं ना ओवरनाइट चेंज, जैसे बने बनाए हम आए, ना हमें कोई प्रश्न पैदा हुआ, ना कोई मेहनत ली किसी से आज तक। अपनी समस्या समाधान के लिए मुझे याद नहीं मैं किसी से बैठा हूंगा, टाइम लिया होगा। हाँ, सेवा के लिए और चीजों के लिए बैठते हैं, मुरली में सब चीज क्लियर है, सब तो क्लियर है, जिसे पूछेंगे वो क्या सुनाएगा, वो भी तो कोई बात सुनाएगा जो मुरली में आई हुई है। इसलिए जो है वो उन दिनों की कहानियां अलग हैं। हमारे सेंटर पर एक बहन थी, उसने बाबा कहा करता था पत्र लिखो, बाबा को पत्र लिखो। उसको लिखना पढ़ना तो आता नहीं था, किसी से पत्र लिखवा के भेज दिया। बाबा ने तुरंत उत्तर दिया करता था, बाबा उसको लिख के भेजा, सर्विसेबल बच्ची। वो कहती मैं तो सर्विस करती नहीं कुछ भी, सर्विसेबल मैं ना ज्ञान सुनाना। कहती बाबा ने कहा है ना, वो सुनाने लग गए। एक बार वो करनाल से दिल्ली किसी को सुना रही थी रास्ते में, तो हमारी भाषा में कई अंग्रेजी के शब्द होते हैं, प्योरिटी, तो सुना रही थी तो जो सुनने वाले कह रहे थे बहन जी हिंदी में समझाओ, अंग्रेजी में ना समझाओ हमें, वो अनपढ़ माता। ये है बाबा का वरदान काम करता था, बाबा ही करवाता था सबको अंदर, ये अंदर संकल्प रहता था। इसलिए जो आज का विषय है मन जीते जगत जीत, आप सब तो बहुत ज्ञानी तो आत्मा बाबा के बच्चे बैठे हैं, सब अच्छी तरह से इस टॉपिक को जानते हैं, दुनिया वाले क्या समझते हैं और बाबा ने हमें क्या समझ दी है। वो मन जीत किसे कहते हैं, बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, प्राणायाम हठ योग, ये मन को अम दमन करना, हठ योग, बहुत मेहनत करते हैं। हमारे भी कई भाई बहने मैं जानता हूं कहते हैं नहीं अच्छा है, थोड़ा तो अच्छा होता है, श्वास को जितना कम किया जाए, कई ऐसे समझते हैं जितना श्वास लो होगा ना उतनी आयु बढ़ जाएगी है? वो कहते हैं श्वास गिनती के लेकर के आए हुए हैं ना, इसलिए अगर हम अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं ना तो श्वास स्लो कर दो। इसलिए वो नब्ज पर हाथ रख के कई बैठ जाते हैं, कई ऐसे करके बैठ जाते हैं, कोई कैसे के बैठे, योग भी करेंगे साथ वो भी करेंगे। हमें तो सिखाया नहीं किसी ने बाबा, हमें तो आते ही, क्योंकि डबल बुद्धि नहीं होते हम, हमें तो जो बाबा ने सुनाया वही करते हैं। जो उसने जैसे उसने जैसे वो करता था वही करते हैं। फॉलो फादर का मैंने क्या, जैसे वो कर देखा ना साकार में। अच्छा आपने नहीं देखा, जिन्होंने देखा वो सुनाएंगे ना आपको, कैसे वो बैठता था, कैसे हमारे दादियां बैठती थी। 92 साल का बाबा सीधी कमरों के टांग पे टांग चढ़ा के बैठता था। बाबा के टाइम पर एक कुर्सी होती थी जिसमें बाबा बैठ के पत्र लिखता था, कुर्सी होती ही नहीं थी। अब भी सीधे होके बैठते थे चौकड़ी लगा करके। डॉक्टर माथुर नाम सुना होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का, मेट्रोलॉजी का हेड, पहली व्यक्ति जो कार लेके मधुबन आया था दिल्ली से, क्योंकि उसकी टांग का एक्सीडेंट से फिर बाद में उसका ऑपरेशन हुआ था, फ्रैक्चर हो गया था ज्ञान में आने से पहले, बाबा से मिलने अपनी कार में आया था हिस्ट्री हॉल में, मैं भी वहीं था। बाबा ने उसके लिए कुर्सी मंगवाई, वो कहे मैं नहीं बैठूंगा बाबा, मैं जमीन पर बैठूंगा। बाबा बच्चे तू नहीं बैठ सकता है, नहीं तो बाबा गद्दी पर बैठे मैं कुर्सी पर बैठूं, सोफा वगैरह होते ही नहीं थे। तपस्या की जीवन थी, तपस्या साधना। इसलिए वो जो सिस्टम है वो दुनिया के सिस्टम है हट के। बाबा के मन जीत का मैना जो है वो हम अच्छी तरह अब समझ गए हैं। दिसे जगत, वो जो मन जीत करते हैं हठ योगी वो जगत जीत नहीं बनते। वो मन को कंट्रोल करने की, स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं थॉट सिस्टम को, श्वास प्रक्रिया को, मगर जगत जीत बनने का तो सवाल ही नहीं। उनको पता ही नहीं जगत जीत होता क्या है। जगत जीत का मैंने ही नहीं वो जानते बनेंगे क्या। और हमारे तो हर समय संकल्प हर समय रहता है कि नई दुनिया आने वाली है, राज्य अधिकारी बनेंगे, जगत जीत का क्या मैना। अच्छा सारे राजा ना बनेंगे, वहां तो प्रजा भी राजा, यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए वहां तो स्टेज ही कुछ और है ना, इसलिए हम तो वो बनने वाले हैं। उसके लिए जो बाबा ने हमें समझ दी है वो अब हमारी समझ में है सबके। मैंने देखा है, जगह जगह जाता रहता हूं, बहुत भाई बहनों को ज्ञान स्पष्ट है, मुरली में, अव्यक्त मुरली में, साकार मुरली में बाबा जो सुनाता है ना, समझ पूरी है। कठिनाई कई दफा थोड़ी जो आती है वो इम्प्लीमेंटेशन की है, व्यवहारिक स्वरूप बनाने में कठिनाई आती है। समझ है, किसी से पूछ लो बाबा ने क्या सुनाया, बालक सो मालिक का क्या मायना होता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुरली में आया था, बाबा ने कहा बालक सो मालिक। बच्चे कोई बात आपको आता है विचार दे दो, बड़ों को दे करके फिर निर्संकल्प हो जाओ आप। इसमें मैंने देखा है बहुत मेहनत है, बड़ों को विचार दिया फिर निर्संकल्प हो जाओ ना, जिम्मेवारी बाबा ने कहा बड़े की आ गई, बस अगर नहीं करेगा तो उसके ऊपर बोझ जाएगा। ये भी मुरली में कहा बाबा ने, ये पढ़ा हमने सुना फिर भी अंदर संकल्प चलता है। बड़ों को कहा था हुआ तो कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं बड़े। ये है मन, मैना थॉट सिस्टम जो हमारा चलता है वो ठीक चले। मन जीते का मैना है थॉट सिस्टम तो है, मन तो चेतन है। इनको कोई मन जीत का ये मैना नहीं जड़ बनाना है, मन चले ही नहीं, नहीं वो तो कोई स्टेज ही नहीं, हम तो चेतन आत्मा है। जब तक शरीर में है मन तो चलेगा ही, संकल्प शक्ति, मन में ना संकल्प शक्ति, इसलिए वो तो चलेगा। मन जीत का भाव ये है कि वो ठीक ऑर्डर में चले। ठीक ऑर्डर में चले की क्या परिभाषा है, सिंपल शब्दों में श्रीमत और ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं के अनुसार हमारा संकल्प चले। जो बाबा की श्रीमत, बाबा की मुरली, उस अनुसार हमारे थॉट सिस्टम चले, इसको कहेंगे मन जीत। इसी से ही समर्थ संकल्प बनेगा। व्यर्थ को समाप्त करने लगेंगे तो कितने संगम युग बीत जाएंगे, लगे रहो। अंधकार को, जैसे कामारी बहने नहीं सुनाती, अंधकार को खत्म करने की कोशिश करते रहो। उसका सहज तरीका, आप लाइट जला दो, बस लाइट से अंधकार समाप्त हो जाएगा। बाबा ने कहा समर्थ से व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। हम समर्थ को बढ़ाने की कोशिश करते, हमारा जो टाइम समय और संकल्प है वो व्यर्थ समर्थ की तरफ जाए। इसलिए इस चीज को हम, इसको मन जीत कहेंगे ब्राह्मण कुल की भाषा में, ब्राह्मण परिवार के। मन जीत का मायना मन में व्यर्थ और साधारण की मात्रा खत्म होती जाए, और उसकी विधि यह है कि समर्थ बढ़ने लग जाए। एक मिसाल के तौर पर आपको बताते हैं, किसी ने बैंक से लोन ले लिया है, क्योंकि व्यर्थ और साधारण कई जन्मों का है, जिसे बाबा पास्ट का खाता कहते हैं, संस्कार भी बाबा भाषा यूज कर रहा है आजकल, कई जन्मों पास्ट का मैंने कई जन्मों का भी, और जो ब्राह्मण कुल में भी या इस जीवन में भी जो कुछ कर्म किया और कर्म से संस्कार बना, अभी दो मिनट पहले का भी जो मेरा थॉट सिस्टम है या कर्म किया वो संस्कार बना, उसको पास्ट में सब चला गया। पास्ट का केवल ये मायना नहीं कि ज्ञान में आने से पहले, या कई जन्मों का जो हमारा सूक्ष्म हिसाब किताब है, कई उसको ही सिर्फ पास्ट समझते हैं। कोई बात हो जाएगी, कहेगी बहुत पुराना मेरा पास्ट का खाता है, कुछ शायद कर्मों का खाता है। नहीं, पास्ट का मायना है इमीडिएट पास्ट भी पास्ट है। मैं अभी क्या सोच रहा हूं और कर रहा हूं, ज्ञान में आने के बाद भी क्या सोच और कर्म किया है वो भी पास्ट है, वो भी खाता है, और वो ज्यादा पावरफुल है। ज्ञान में आने के बाद अगर कोई चीज मैंने किया श्रीमत के या हमारे ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं के अनुसार नहीं हुई है, वो भी तो खाता है ना, वो भी तो हिसाब किताब है। इसलिए वो है, खाता है, वो तो नेगेटिव हो गया। इसलिए उसके बारे में ज्यादा सोचते रहेंगे तो क्या होगा। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर सुना रहा था, एक व्यक्ति है, बैंक से लोन ले लिया उसने, बैंक को देना उसने, मगर उसको लोन को चुकाने का तरीका क्या है, क्या विधि है, जमा कराने लग जाए, विड्रॉल कम कर दे, डिपॉजिट्स बढ़ा दे। वे एक दिन बैंक वाले उसका लोन काट देंगे क्योंकि उसका डिपॉजिट बढ़ गया है। इसलिए समर्थ व्यर्थ को समाप्त कर देता है बाबा ने कहा। हम समर्थ को बढ़ाने में लग जाते हैं। और ये भी हम सब जानते हैं कि संस्कार कर्म से बनता है, केवल थॉट सिस्टम से संस्कार नहीं बनता, टाइम वेस्ट करता है नेगेटिव थॉट सिस्टम। ऐसे ही केवल मनन से, हम मुरली की पॉइंट याद करते रहें, स्लोगन वरदान याद करते रहें, पांच बार प्रक्रिया भी वो भी करें, पांच रूपों का वो भी करें, ये सब मानसिक स्टेज है, अच्छी बातें हैं, मगर ये किस चीज के लिए हैं? ये जितनी एक्सरसाइजेज हैं मेमोरी के लिए हैं, और ये ताकि हमारे अंदर समर्थ कर्म करने की शक्ति बढ़े। समर्थ कर्म करना जरूरी है। अगर हमने पास्ट को खत्म करना है तो समर्थ कर्म केवल मनन से, मनन हमें समर्थ करने की प्रेरणा देता है। बल भरता है हमारे अंदर, हमें कैपेबल बनाता है, मगर खाता जो है प्लस और माइनस वो ज्यादा डिपेंड करता है कर्म से। कर्म के खाते, इसलिए कहते कर्म का, कर्मों का खाता। संकल्पों का खाता वो बीज है, मगर वो बीज श्रेष्ठ है, ओके, मगर मेरे पास बीज श्रेष्ठ है, सीड अच्छा है, मगर धरनी में डाल करके तब फसल को मैं फायदा ले सकता हूं। ओनली सीड से काम नहीं चलेगा, सीड को इम्प्लांट करना पड़ेगा, तब खेती होगी और मुझे फल मिलेगा। कर्म की महानता है, मेरे द्वारा क्या कर्म हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी टाइम मनी एनर्जी, जिसे बाबा कहते हैं तन मन धन समय संकल्प, ये कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, किस खाते में, ये जमा का खाता है जो मेरे पास्ट को खत्म कर देगा, अपने आप खत्म कर देगा। जितने हमारे पुराने भाई बहने हैं, दादियां हैं, जो साकार बाबा के बहुत समीप रहे हैं, आप उनके अनुभव शेयर सुने, आपको सुनाएंगे। जानकी दादी के बहुत प्यार से कई बार सुनाती है कि बाबा की मुरली सुनी, बॉम्बे में थी, मुरली सुनने के बाद मैं नाश्ते पर बैठ गई, जैसे नॉर्मल रूटीन होता है, बाबा चक्कर लगाने आ गया, कहा नाश्ता कर रही हो, हाँ बाबा जी, बाबा किसी को सुनाया नहीं और नाश्ता कर रही हो। दादी बहुत प्यार से सुनाती, कहती उस दिन के बाद मुरली सुनी और कहीं ना कहीं जाती थी दुदर गार्डन में, किसी को सुना करके फिर आके नाश्ता करती थी। कर्म कैसे, कर्म ये कर्म है, कर्म किसी को बाबा की बात सुनाना। और हमें याद है जब हम आते थे उन दिनों में इस बात पर बहुत जोर दिया जाता था, बहुत जोर, हर एक को सुनाना ही है किसी ना किसी को। और उन दिनों में इस ज्ञान का विरोध बहुत ज्यादा था, नया ज्ञान था और भक्ति में भी ताकत थी। 50-60 साल पहले लोग सुनना ही पसंद नहीं करते थे, परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लोग कहते दिमाग खराब हो गया इनका। अब लोग कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन दिनों में कोई बात किसी को सुनाने में बहुत मेहनत लगती थी, ना लिटरेचर होता था, ना एग्जीबिशन होती थी, कोई किताब नहीं छपी हुई थी जब हम आए, कुछ नहीं था। शिवरात्रि का एक फंक्शन हम किया करते थे बस, सारा साल और कोई प्रदर्शनी वगैरह कोई सेवा नहीं। सेवा क्या होती थी, ओरल, एक दूसरे को जाके सुनाना। और हमारी बहनें कहती थी रविवार के दिन नयों को लाने का दिन होता था, शाम के समय पर नए आ सकते हैं, बाकी दिनों में तो ब्राह्मणी क्लास सवेरे शाम करते थे, मगर हर एक का चार्ट देखा जाता था। बहनों की इंस्ट्रक्शन होती थी कि रविवार को नयों को कौन लेके आया, एक को तो लाना ही है, और वो लेके जिसको आए वो जा ना चला ना जाए, मेरे से मिलाना भी है। ऐसे हम लोगों ने सेवा की है। अब एक को लाना भी कठिन होता था, एक को लाना भी, सारा सप्ताह भर हम 2-4-5-6 को कहते रहते थे क्योंकि हमारा रिजल्ट निकलना है, आपने एक को भी नहीं लाए, एक को भी नहीं लाए। आखिर शाम को किसी के घर जाके बैठ जाते थे, एक को पकड़ के ले आते थे ताकि हमारा रिजल्ट तो ठीक निकले कि एक तो लाए, एक को तो ले आए। ऐसे हम लोगों से श्रेष्ठ कर्म करवाया गया है। ये श्रेष्ठ कर्म है, किसी को बाबा की बात सुनाना, प्रेरणा देना किसी विधि से कैसे भी करके, और फिर उसको बाबा के साथ जोड़ना। कितना संकल्प चलाना पड़ता था, कितने थॉट्स, क्या होता तो कोई और थॉट चलेगा ही नहीं, सारा तो यही चलेगा कि एक को लेके जाना है, एक को लेके जाना है। और अब हमें उन दिनों में ये सिखाया जाता था कि सेवा ऐसा बटन है जिस बटन के ऑन करने से सारे गुण और शक्तियां आ जाएंगी। हम कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया बात है, सारे गुण और शक्तियां आप में आ जाएंगी अगर आपने सेवा का संकल्प रखा था। क्योंकि हमने देखा, वाकई ठीक है, जब हम किसी को समझाने का या किसी को बाबा की बात सुनाने का संकल्प करते थे ना, तो उसको आत्मा रूप में देखते थे, फिर मुस्कुराते थे, तो गुण आ रहे हैं ना उसके अंदर, हमारे अंदर। क्योंकि उससे बात करनी है, उसको सेंटर के लिए कहना है, नहीं तो उसका तो फेस बदल जाएगा, वो तो ब्रह्मा कुमारी का नाम सुन के चौंक जाएगा। तो कितना अंदर तैयारी हमें अपनी करनी होती थी सेवा के कारण। यह है श्रेष्ठ संकल्प, यह है समर्थ का खाता, इसको कहते हैं मन जीत। मैना कि हमारे जो और संसारिक व्यवहारिक कारोबार के संकल्प चलते रहते, जो नेसेसरी हैं वो करने हैं, ओके करने हैं, मगर हमें अपने थॉट सिस्टम को, जो पास्ट के खाते को ठीक करना है, तो उसका तरीका यह है कि मुझे जमा का खाता बहुत बढ़ाना है। इसलिए हम बहुत अटेंशन रखते थे कि हमारा जमा का खाता तन से मन से धन से स्थूल सेवा करके। अभी आपने लेटेस्ट मुरली सुनी होगी पिछले रविवार की, जिसमें ऑलराउंडर की परिभाषा बाबा ने दी है, तीन प्रकार की सेवा की बात बाबा ने कही है, जिसमें सूक्ष्म सेवा भी, व्यवहार में आते भी, संबंध संपर्क में भी, और स्थूल सेवा भी, यज्ञ की सेवा कोई भी हो वो भी करते थे, जमा होता है उससे हमारे थॉट्स की जो है और चीजों। नहीं तो क्या है कि हम सब जानते हैं पास्ट का खाता जो संस्कार है क्या काम करता है, क्या काम करता है, जो भी पास्ट का खाता है वो क्या करता है, वो नेगेटिव थॉट क्रिएट करता है। नेगेटिव थॉट क्रिएट करेगा तो नेगेटिव थॉट जिसको बार बार आते रहेंगे, वो कभी ना कभी उसको, अगर जागृत नहीं तो जब नींद करेगा स्वप्न में डिस्टर्ब करेंगे, उसको माइनस करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा ना। मन जीत का मानना यह कि हमें अपने समर्थ के खाते को बढ़ाना और माइनस के खाते की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जितनी अटेंशन ये है कि मैं अपना तन मन धन समय संकल्प सेवा में लगाऊं, जमा होता है, उतना ही ध्यान के मेरे से कोई माइनस तो नहीं होता है। जो मेरे पास्ट के नेगेटिव संस्कार हैं वो उससे कुछ मेरे से कर्म ना हो जाए, ये ध्यान रखना पड़ता है बहुत। उसके लिए भी बाबा ने कहा है मुरली के अंदर, तीन चीजें आप लोगों ने पर सुनी होगी, पुराने बैठे हुए हैं, परमत, परचिंतन, परदोष। ये जो है ये हमारे माइनस कर देता है। ये जो अंदर अंदर एक तरफ तो हम जमा का खाता बनाएं, अगर ये चीजों के अधीन हो करके हमारे से कुछ हो जाता है, समय संकल्प वेस्ट जाता है, दूसरों के थॉट्स में डिस्टर्बेंस आती है, तो भी तो किसी खाते में जाएगा ना, माइनस हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अपना जमा का खाता चेक करते रहो, देखते रहो, बाबा अटेंशन दिलवाता है। कभी कभी बाबा कहता है चल तो रहे हो, स्पीड तो है पर आपकी स्पीड समय के अनुसार है, उसको चेक करो। बाबा क्यों कहता है? भाव बाबा का ये है कि नहीं बच्चे अंदर बहुत डेप्थ में जाओ, गहराई में जाओ, ऊपर ऊपर से नहीं, बहुत सूक्ष्म। कभी कभी बाबा कहता है बच्चे तीन प्रकार की बुद्धि है, सतो रजो तमोगुनी है। देखो बच्चे मेरी बुद्धि किस प्रकार से काम करती है। बाबा हर बात समझाने की कोशिश करता हमें, बाबा मुझे किस तरीके से अंदर मेरे जो थॉट्स हैं मेरे, फिर वो संकल्प आकर के समय भी बर्बाद करते हैं, दूसरों का समय भी, वो तो कर्म हो गया ना। मैंने किसी से बैठ के पर चिंतन किया तो ये थॉट्स नहीं है, ये कर्म है। टाइम वेस्ट किया ना किसी की कमी कमजोरी का। तभी बाबा ने एक मुरली में सावधान किया, आपको याद होगी वो मुरली। बाबा ने कहा बच्चे किसी का अवगुण चित पर रखना पाप है, हमारा चित खराब हो जाएगा ना। दूसरी लाइन में बाबा ने क्या कहा, बच्चे किसी का अवगुण दूसरे को सुनाना महापाप है, क्योंकि उसे वातावरण दूषित हो गया ना, उसके अंदर भी नेगेटिविटी आ गई, उसको नहीं पता था, उसको मैंने जाके किसी की कमी कमजोरी सुना दी, उससे फायदा क्या, हाल तो कुछ निकलेगा नहीं। कभी बाबा कहता है बच्चे गंदगी भी किस डब्बे में डालनी वो पता होना चाहिए, कचरा तो है पर कहाँ डालना है ये समझ होनी चाहिए। आपने किसी ऐसे में कचरा डाल दिया उसकी स्थिति खराब हो गई, योग लगना बंद हो गया, किस खाते में जाएगा, ये सब मन जीत के अंदर बातें हैं। हमें बहुत सावधान रहना, मैं कितना कर रहा हूं वो तो अच्छी बात है पर मेरे से कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो माइनस में चला जाए। इसलिए बाबा को मुरलियों में बहुत सूक्ष्म चीजों की तरफ ध्यान खिंचवाना पड़ता है बच्चों का। एक मुरली में बाबा ने कहा कई बच्चों को, बच्चे सूक्ष्म ईगो होता है। अब सूक्ष्म ईगो तो बाबा कई बार कहता है, बाबा ने उसको फिर उस मुरली में क्लियर और कर दिया, कैसे बाबा सूक्ष्म ईगो किसे कह रहे हो बाबा? बच्चे अपना विचार, मेरा विचार, अपने विचार पर इतना जोर देना नहीं। कहा वो बालक और मालिक की मुरली भी तो सामने रखो ना? अगर मेरा विचार नहीं माना गया तो खुद भी डिस्टर्ब, दूसरे भी डिस्टर्ब। विचार दो भी अच्छी बात है, विचार दो पर मेरे विचार अनुसार ही चलो। नहीं ये भी तो रॉन्ग है, ये भी कोई श्रीमत नहीं है। इसलिए ये भी अंदर में हमें देखना है कि नहीं ये कठिनाई पैदा करता है ये चीजें। विचार अच्छी बात है, ठीक है दियो, दियो अपना विचार दियो ठीक, और उसकी निशानी भी एक मुरली में बाबा ने बहुत क्लियर बताई है। अगर हमारा जमा का खाता हो रहा है, क्या निशानी बाबा ने बताई? बाबा ने कहा एक तो बहुत खुशी, आंतरिक खुशी रहेगी, जमा हो रहा है ना, जमा की निशानी क्या है? खुशी। दूसरे क्या बाबा ने बताया? लाइट, बोझ नहीं, भारीपन नहीं, क्योंकि पुराना खत्म हो रहा है। खुशी है जमा हो रहा है, जमा पुराने को खत्म कर रहा है तो लाइट। और तीसरा बाबा ने क्या बताया? उसकी रिजल्ट उमंगों सा रहेगा। अब हर कोई हम चेक कर सकते हैं। अगर वाक्य ही मेरे में जमा का खाता हो रहा है तो मेरी खुशी बढ़ रही है। जैसे आप देखो आपके पास पासबुक है, आपने देखा ये 10,000, अगले महीने 20,000, अगले महीने 30,000, खुशी में फर्क नहीं पड़ेगा? एंट्री आप देख रहे हो ना, एंट्री है ना। किसी को कहो ना कहो आपके फेस दिखाई देगा। क्यों? क्यों डिपॉजिट्स बढ़ रहा है ना। इसलिए खुशी जो है, अंदर अगर मेरा जमा का खाता है तो मैं खुश रहता हूं। बनावटी खुशी नहीं, दिखावे वाली नहीं, मुझे अंदर से खुशी है। मेरा भविष्य उज्जवल है, श्रेष्ठ है, वाह, मैं वाकई आगे बढ़ रहा हूं। लाइट, मेरा पास्ट खत्म हो रहा है और उमंग उत्साह, क्योंकि मैंने देखा है, मेरा अनुभव है, जो अपने विचार पर जोर देते हैं ना, उनका उमंग उत्साह नीचे ऊपर होता रहता है। अगर बात मानी गई तो उमंग उत्साह बड़े जोर से आएगा, अगर नहीं बात मानी गई तो आप देखो, हाँ कर लो कर लो कर लो। अगर किसी की बात नहीं मानी गई, मीटिंग में उसने विचार दिया नहीं मानी गई, कहेगा हाँ ठीक है करो करो करो, और अगर मानी गई तो फिर आप देखो फिर तो क्या हुआ। फिर हुआ ना मेरेपन का अंदर हुआ, अंदर सूक्ष्म बाबा का तना बच्चे। इन चीजों में नुकसान हो जाता है, बहुत तकलीफ हो जाती है, ये देखो। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे चेक करते रहो अपनी स्थिति को अंदर से ना, असेसमेंट अपना खुद देखो, अंतर्मुखी होकर के, शांत होकर के, ऐसे कभी कभी थोड़ा सा टाइम निकाल के ना, जैसे सेवा का और चीजों का संकल्प बहुत रहता है, अच्छी बात है, वो तो होना ही चाहिए, पर कभी कभी थोड़ा सा ऐसे बैठ करके ना अपने आप को देख लो, मुखड़ा देख ले प्राणी, जैसे अंदर देखो सचमुच ही मेरी प्रोग्रेस है सचमुच। और मैंने वो तीन निशानियां बताई, खुशी है, उमंग गुस्सा है, हल्कापन है। और अगर नहीं है समझो तो उसको कहेंगे रुकावट है, सब ब्लॉकेज बैरियर कोई चीज है। इसलिए उसके समाधान बहुत जरूरी है। जैसे शरीर हमारा है ना, ये शरीर, ऐसे मानसिक स्टेज का भी बहुत गहरा कनेक्शन है। शरीर जैसे हमारा है, हमें पता कुछ भी नहीं लगता है। कई बार मैंने देखा है, थोड़ा सा सिर में दर्द होता है, हल्का सा कुछ ऐसे, मैंने कई केसेस देखे, डॉक्टर के पास गए डायग्नोस कराने के लिए, वो कहता आपको तो कैंसर भी लास्ट स्टेज पर है। मैंने मेरा अनुभव है, तब तक कुछ पता ही नहीं लगा, उसको कुछ नहीं पता लगा। अभी मैं कल दिल्ली में होके आए, एक हमारी सीनियर बहन है, उससे मिलकर के आया ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में, उसका आंख का आज 11 बजे ऑपरेशन था। मैंने कहा बहन ये आपको तकलीफ कब हुई, कहती है मुझे तो कुछ पता नहीं, दोनों आंखें हैं ना इसलिए पता ही कुछ, दोनों आंखें, एक आंख में प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम, उसको कुछ पता ही नहीं। वो कहती कुछ दिन पहले मैंने कहा चलो यहाँ आई में, यहाँ ही अपना जो हॉस्पिटल है वहां मैं चेक कराती हूँ, डॉक्टर ने कहा ऐसे करके देखो एक आंख बंद करके, कहते मैंने एक आंख बंद की, दूसरी आंख में कालापन अंधेरा, दोनों आंखें खुली है तो नॉर्मल, ये आंख बंद की तो काला। उन्होंने डायग्नोस किया इसका ट्रीटमेंट नहीं है। फिर उसको थोड़ा आया, ये मैं रब क्यों सुना रहा हूं, शरीर के लिए जैसे हमें अंदर हलचल हो जाती है ना, मुझे ये तकलीफ हो गई है, भाग दौड़ की ये किया, बहुत कुछ किया, फिर आकर पता लग गया कि एक जगह उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, डॉक्टर है बड़ा, उसका वहां वाकफित मिल गए, ये हो गया, आज 11 बजे ऑपरेशन था। डॉक्टर ने कहा नहीं, उम्मीद है 60-70% बेनिफिट हो जाएगा, नहीं तो वो तो एक आंख गई है। ये मैंने भाव मेरा के जैसे शरीर के लिए हमें अंदर आता है, ऐसे हमारे थॉट सिस्टम में, मन में अगर कोई डिस्टर्बेंस है, खुशी नहीं है, भारीपन है, उमंगोसा की कमी है, तो हमें डायग्नोस कराना चाहिए ना। किसे कराएं डायग्नोस, किसे कराएं, जैसे उसमें एक्सपर्ट हैं, उसको किसी ने कहा आप दिल्ली जाओ, दिल्ली में भी ये डॉक्टर्स के पास जाओ, उसकी इतनी फीस जमा कराओ, आपको सब पता लग जाएगा। उसने ठीक डायग्नोस हो गया। ऐसे हमारे यहाँ पर कितने सीनियर दादियां सीनियर भाई हैं। और मैं आपको अपने अनुभव से कहता हूं, सच्चाई से, कोई ये ना समझे कि इन हमारी दादियां और ये बड़े भाई बहनों के पास टाइम नहीं है। जानकी दादी अभी हमारी कुछ भाइयों की भट्टी थी 8-10 दिन पहले, दादी कहती है मुझे सबसे ये शब्द अच्छा नहीं लगता जो मुझे को कहे दादी आपके पास टाइम नहीं है। कहती है नो नो, केवल एडजस्टमेंट है कि इस टाइम पर मैं बिजी हूं, मेरे पास कोई आए मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि टाइम नहीं। मैं अपनी ब्राह्मणियों को भी कहती हूं किसी को ये नहीं कहना टाइम नहीं। इसलिए हम उनके पास मिल सकते हैं, हमारे सीनियर भाई हैं सीनियर बहनें हैं, हम अपनी बात अपनी मन की जो स्टेज है जो अंदर नहीं वो प्रोग्रेस हो रही है नहीं खुशी बढ़ रही है, हमें शेयर करना चाहिए। और जैसे शरीर बीमारी का में भी आप देखोगे, अब जैसे ही उस बहन की डायग्नोज हुआ उसको कहा गया कि गो फॉर इमीडिएट ट्रीटमेंट, अगर ये आपकी बीमारी ज्यादा देर रहेगी तो इसका इलाज मुश्किल है। इसलिए अगर हमें मानसिक कुछ कठिनाई है, मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, खुशी नहीं बढ़ रही है, हल्कापन नहीं आ रहा है, देयर इज समथिंग ब्लॉकेज, कोई चीज है, मुझे डायग्नोज कराना चाहिए, मैं ना मुझे किसी से बैठना चाहिए। और बैठने से पहले मन से ये बात भी करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए कि मैं जिस पर के पास जा रहा हूं उसमें विश्वास है मेरा, अगर मेरा उसमें विश्वास नहीं है जो वो कहेगा फिर मैं इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। किसी में विश्वास है मेरा, कई दफा ऐसी स्टेज भी आ सकती है किसी में विश्वास ही ना हो, अगर ऐसी स्टेज आगी तो खतरनाक है किसी पे विश्वास मैं ही राइट हूं मुझे किसी में विश्वास नहीं है, नो ये स्टेज आ जाती कई बार, मगर नहीं, विश्वास बहुत निराकार बाबा ब्रह्मा बाबा व्यक्त बाप दादा वो सब है, वो तो विश्वास हमारे हैं, साकार में भी तो गाइडेंस चाहिए हमें। हमारी कठिनाई कौन बैठ के सुने और समाधान दे भी, अगर हमारे से नहीं, मैंने कहा सबसे पहले ठीक करे, नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, हमें जरूर डिस्कस करना चाहिए विद फेथ, और जो हमें कहा जाए उस पर चलना चाहिए, क्योंकि अनुभवी आत्माएं हैं बाबा के बहुत, जिनको बाबा अपने गले का हार और नजदीक समझ रहा है, वो बाबा के रत्नों के पास हम बैठ करके अपनी बात कहें और उसका समाधान लें। अदरवाइज क्या कठिनाई, मैंने देखा है जैसे कई बीमारियां ऐसे शरीर की होती हैं जिनको हम छूत की बीमारी कहते हैं, वो एक को लगती है दूसरे को भी चांस है तीसरे को भी चांस है, जैसे कई आप सब जानते हैं ये भी ऐसी तकलीफ है मानसिक भी, जिसको उमंग उत्साह नहीं होगा ना वो जिसके पास बैठेगा उसका ढीला कर देगा, कई कहेगा अरे भाई आपको क्या पता हम भी बड़े आपकी तरफ तेज दौड़े थे अब हम समझ गए हैं आप भी ध्यान रखना, बताइए ये कौन कहेगा जिसका उमंग उत्साह ढीला हुआ पड़ा है, जो घोड़ा खड़ा है वो दौड़ते हुए घोड़े को भी देख के खुशी नहीं उसकी, कहेगा ये इसको पता ही कुछ नहीं है, अनुभवी का मायना ये है कि क्योंकि मैं रुक गया हूं वो भी रुक जाए, इसको भी अनुभवी कहते हैं, ये कौन सा अनुभवी है, नहीं ऐसी राय देना, बाबा कहता है बहुत राय साहब भी मिलेंगे, नहीं मैं किसी कारण से रुका हुआ हूं दूसरा दौड़ रहा है, अच्छी बात है खुशी की बात है ना, मैं भी अपना हल करके मैं भी दौड़ूं। इसलिए ये है अंदर गहराई में ये जो भट्टी में हम आते हैं हमें बहुत अच्छा टाइम मिलता है, हम आपको बताएं बहुत अच्छा टाइम मिलता है, ऐसा सेंटरों पर टाइम नहीं मिलता है। वहाँ सेवाएं हैं, कारोबार है, जिम्मेवारियां हैं बहुत, मैं जानता हूँ। यहाँ आप फ्री हैं एकदम, मगर मेरा आपसे एक सुझाव ये जरूर रहेगा कि जहां भी आप यहां से जाने के बाद एक संकल्प लेके जाओ कि हमें कुछ टाइम वहां जरूर निकालना है जब फ्री होके बैठना है। कारोबार चलते रहेंगे, आपका ताकतवर होना बहुत जरूरी है। सेवाएं तो बढ़ती जाएंगी और आएंगी, सेवाओं के पीछे भागने से कुछ नहीं है, सेवा तो बहुत आएंगी। आपका मेरा शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। मुझे किसी भी विधि से शक्तिशाली बनना है, क्योंकि आने वाले समय की मांग है कि मुझे शक्तिशाली होना है। और शक्तिशाली होने का तरीका यही है कि मैं उस एरियाज को समझूं जिस एरिए में मुझे रुकावट है। अगर मैं वो डायग्नोस नहीं कर रहा, मैं कितना बड़ा खाना खाता रहूं, कितना बढ़िया खाता रहूं, मेरे पेट में प्रॉब्लम है, वो खाना तो कीड़े खा जाएंगे सारे। जब तक मैंने उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, मेरी वास्तव में स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी प्रोग्रेस जो है, मेरी शक्ति जो है, वो तब बढ़ जाएगी जब मैं अपने उन चीजों को देखूंगा। मेरे प्लस पॉइंट भी बहुत हैं, मेरे अंदर अच्छी अच्छी बातें भी बहुत हैं, पर कुछ ऐसी भी हैं जो उसमें माइनस कर देती हैं। तो उस एरियाज को भी तो मुझे देखना है। हम जब भक्ति में कहते थे, मुझे याद है जब हम छोटे थे गीत गाया करते थे, अरे भाई तू पुण्य कर या ना कर पर पाप ना कर, तू पुण्य भले ना कर। चलो हम डिपॉजिट्स कितना भी करें पर विड्रॉल कम करें ना, तब हम शक्तिशाली बन जाएंगे। शक्तिशाली बनने का क्या तरीका है? जिसमें वेस्टेज नहीं है वो समर्थ बनेगा ही बनेगा ही। वेस्टेज अगर है तो बाबा कहता है कि वो फिर समर्थ कैसे बनेगा? व्यर्थ तो समर्थ को समाप्त कर देगा। थोड़ा बहुत समर्थ किया और व्यर्थ कितना है। इसलिए इन चीजों को बहुत गहराई से, अच्छी तरह से, फ्री होकर के अपनी सेल्फ एनालाइजेशन और सेल्फ असेसमेंट, जिसे हम कहते हैं, इट इज ए मस्ट। आगे बढ़ने का तरीका जो विधि है, बाबा ने भी एक दो लाइनों में बहुत पहले की मुरली में कहा था, वृद्धि की विधि। और क्या कहा था उस मुरली का हेडिंग था? चेकिंग एंड चेंज। सिंपल सी बात, अंदर देखो, चेक करो और देखो और चेंज करो। सिर्फ चेकिंग नहीं, चेंज करो बच्चे। और उसके लिए हमें जो चीजें, जो हमारे आगे हैं, भाई बहने हैं, दादियां, उनसे मदद लेके कैसे भी करके, मगर ये जो चेकिंग है ये बड़ा डीप सब्जेक्ट है, बहुत डीप सब्जेक्ट है। मैंने बहुत बार देखा है कि जो मेरा अपना ही थॉट है वो मुझे कहता तू राइट है। मेरी अपनी ही बुद्धि कहती है तू राइट है। ये जो बैरियर है इसको क्रॉस करना, अगर मैं ठीक हूं तो सारे कहेंगे ठीक है ना। इसलिए बाबा ने कहा 3 सर्टिफिकेट लो बच्चे। बाबा तो बताता है, सब चीजें क्लियर करता है। अपने से लो, बाबा से लो, ये तो बड़े इजी मिल जाएंगे। मैं ठीक हूं, बाबा भी ठीक ही मुझे कह रहा है। बाबा ने कहा तीसरा भी लो कि दूसरे भी कह तू ठीक है, ये मुश्किल है। और यही है जो हमें आगे बढ़ा सकता है। हम कहेंगे दूसरों से लेने का क्या, मैंने वो तो सारे ही ऐसे ही हैं, मैं क्योंकि ठीक हूं दूसरों के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज सटल ईगो जो हमारे रास्ते में रुकावट बनता है। इसलिए मन जीत का मैंने भाव ये है कि अपने थॉट्स को हम पावरफुल बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, समर्थ बनाएं, और विश्व के अधिकारी तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। धन्यवाद। ओम शांति।
जगी रहे आरज़ू।